परमेश्वर का कथन, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर। एक भाग तीन। इसके आगे हम नूह की कहानी की चर्चा करेंगे और ये किस प्रकार परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के स्वभाव और स्वयं परमेश्वर के विषय से संबंधित है। पवित्र शास्त्रों के इस भाग में तुम लोग परमेश्वर को नूह के साथ क्या करते हुए देखते हो? कदाचित यहां बैठा हुआ प्रत्येक जन पवित्र शास्त्र को पढ़ने से इसके बारे में कुछ न कुछ जानता है। परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनवाया, फिर परमेश्वर ने संसार का नाश करने के लिए जल प्रलय का उपयोग किया। परमेश्वर ने नूह के अपने परिवार के 8 लोगों को बचाने के लिए, जीवित रहने हेतु अनुमति देने के लिए और मानव जाति की अगली पीढ़ी के पूर्वज बनने के लिए उसे एक जहाज बनाने दिया। अब आइए हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें। ख नूह। एक, परमेश्वर संसार को जलप्रलय से नाश करने का इरादा करता है। नूह को एक जहाज बनाने का निर्देश देता है। उत्पत्ति 6:9-14। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उत्पत्ति 6:18-22। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इन अंशों को पढ़ने के बाद क्या अब तुम लोगों के पास नूह के बारे में एक सामान्य समझ है कि वो कैसा है, नूह किस प्रकार का व्यक्ति था? मूल पाठ है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वर्तमान लोगों की समझ के अनुसार पीछे उस समय में एक धर्मी व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति था? एक धर्मी पुरुष को एक सिद्ध पुरुष होना चाहिए। क्या तुम लोग जानते हो कि ये सिद्ध पुरुष मनुष्य की दृष्टि में सिद्ध हैं या परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध हैं? बिना किसी शंका के ये सिद्ध पुरुष परमेश्वर की दृष्टि में एक सिद्ध पुरुष है और मनुष्य की दृष्टि में नहीं, ये तो निश्चित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य अंधा है और देख नहीं सकता है, और सिर्फ परमेश्वर ही पूरी पृथ्वी पर और हर एक व्यक्ति को देखता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि नूह एक सिद्ध पुरुष है। इसलिए संसार को जल प्रलय से नष्ट करने की परमेश्वर की योजना उस क्षण शुरू हो गई थी जब उसने नूह को बुलाया था। उस युग में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नूह को बुलाने का इरादा किया। उसे ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस घड़ी परमेश्वर के पास उसके हृदय में एक योजना थी। उसकी योजना संसार को जल प्रलय से नाश करने की थी। संसार को क्यों नाश करना है? यहां कहा गया है उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तुम लोग इस वाक्यांश से क्या देखते हो? पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। ये पृथ्वी पर एक घटना है जब संसार और इसके लोग चरमावस्था तक बिगड़ गए हैं, और वो है पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। आज की भाषा में उपद्रव से भर गई थी मतलब सब कुछ गड़बड़ है। मनुष्य के लिए इसका मतलब है कि जीवन के सभी दौर में कोई क्रम नहीं है और परिस्थितियां बहुत ही अस्त व्यस्त है और उन्हें संभालना कठिन है। परमेश्वर की नजरों में इसका मतलब है कि संसार के लोग बहुत ही भ्रष्ट हैं। किस हद तक भ्रष्ट हैं? उस हद तक भ्रष्ट हैं कि परमेश्वर आगे से उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और वो इसके विषय में आगे से और धीरज नहीं धर सकता है। उस हद तक भ्रष्ट हैं कि परमेश्वर उसे नष्ट करने का निर्णय लेता है। जब परमेश्वर ने ठान लिया था कि संसार को नष्ट कर दें, तो उसने जहाज बनाने के लिए किसी को ढूंढने की योजना बनाई। फिर परमेश्वर ने इस कार्य करने के लिए नूह को चुना, जो ये है कि नूह को जहाज बनाने दिया जाए। नूह को क्यों चुना? परमेश्वर की नजरों में नूह एक धर्मी पुरुष है, और चाहे परमेश्वर उसे कुछ भी करने का निर्देश दें, वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब है कि जो कुछ भी परमेश्वर उसे करने के लिए कहेगा वो उसे करेगा। परमेश्वर अपने साथ कार्य करने के लिए जो कुछ उसने सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए और पृथ्वी पर अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहता था। वापस उस समय क्या नूह के अलावा कोई और व्यक्ति था जो ऐसे कार्य को पूर्ण कर सकता था? निश्चित रूप से नहीं। नूह ही एकमात्र उम्मीदवार था, ऐसा एकमात्र व्यक्ति जो उसे पूर्ण कर सकता था, जिसे परमेश्वर ने सौंपा था, और इस प्रकार परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन क्या उस समय लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का दायरा एवं मापदंड वैसे ही थे जैसे अब है? उत्तर ये है कि इसमें बिल्कुल एक अंतर है। मैं क्यों पूछता हूं? उस समय के दौरान परमेश्वर की नजरों में केवल नूह ही एक धर्मी पुरुष था। एक अर्थ में उसकी पत्नी और उसके बेटे और बहुएं सभी धर्मी लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने नूह के कारण इन लोगों को अब भी बचा कर रखा था। परमेश्वर ने उनसे उस तरह से अपेक्षा नहीं की थी जैसे वो आज के लोगों से अपेक्षा करता है, और इसके बजाय उसने नूह के परिवार के 8 सदस्यों को सुरक्षित रखा। उन्होंने नूह की धार्मिकता के कारण परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। यदि नूह नहीं होता तो उनमें से कोई भी उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता था जो परमेश्वर ने सौंपा था। इसलिए नूह ही ऐसा एकमात्र व्यक्ति था जिससे अपेक्षा की गई थी कि वो उस समय संसार के विनाश में जीवित बचा रहे, अन्य लोग बस अतिरिक्त सहायक लाभार्थी थे। ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपने प्रबंधकीय कार्य को आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया उसके पहले के युग में, ऐसे सिद्धांत एवं मापदंड जिसके तहत वो लोगों से व्यवहार करता और उनसे अपेक्षा करता था, वे अपेक्षाकृत शिथिल थे। आज के लोगों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने नूह के परिवार के 8 सदस्यों से व्यवहार किया उसमें निष्पक्षता का अभाव है। किंतु कार्य के उस परिमाण की तुलना में जिसे वो अब लोगों पर करता है और उसके वचन की मात्रा की तुलना में जिसे वो देता है, वो व्यवहार जो परमेश्वर ने नूह के परिवार के 8 लोगों से किया वो महज एक कार्य सिद्धांत था जिसने उस समय उसके कार्य की पृष्ठभूमि प्रदान की थी। तुलनात्मक रूप से क्या नूह के परिवार के 8 लोगों ने परमेश्वर से कहीं ज्यादा प्राप्त किया था, या क्या आज के लोगों ने? ये कि नूह का बुलाया जाना एक साधारण तथ्य है, परंतु वो मुख्य बिंदु जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। इस अभिलेख में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा एवं उसका सार वो साधारण नहीं है। परमेश्वर के इन विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि परमेश्वर किस प्रकार के व्यक्ति को बुलाने की इच्छा करता है और इसके माध्यम से हमें उसके स्वभाव, इच्छा एवं सार को समझना होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः परमेश्वर की नजरों में ये महज किस प्रकार का व्यक्ति है जिसे वो बुलाता है? ये ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके वचनों को सुन सके, जो उसके निर्देशों का अनुसरण कर सके। ठीक उसी समय ये ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके पास जिम्मेदारी की भावना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस जिम्मेदारी एवं कर्तव्य के रूप में इससे व्यवहार करने के द्वारा परमेश्वर के वचन को क्रियान्वित करेगा जिसे निभाने के लिए वो बाध्य है। तब क्या इस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति होने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को जानता है? नहीं। उस समय अतीत में नूह ने परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना था या परमेश्वर के किसी कार्य का अनुभव नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर के बारे में नूह का ज्ञान बहुत ही कम था। हालांकि यहां लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर भी क्या उसने कभी परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखा था? उत्तर है पक्के तौर पर नहीं, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ परमेश्वर के संदेशवाहक ही लोगों के पास आते थे, जबकि वे चीजों को कहने एवं करने के द्वारा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। वे महज परमेश्वर की इच्छा एवं इरादों को सूचित कर रहे थे। परमेश्वर का व्यक्तित्व मनुष्य पर आमने सामने प्रकट नहीं हुआ था। पवित्र शास्त्र के इस भाग में हम सब मूल रूप से देखते हैं कि इस व्यक्ति नूह को क्या करना था और उसके लिए परमेश्वर के निर्देश क्या थे। अतः वो सार क्या था जिसे यहां परमेश्वर के द्वारा व्यक्त किया गया था? सब कुछ जो परमेश्वर करता है उसकी योजना सुनिश्चितता के साथ बनाई जाती है। जब वो किसी चीज या परिस्थिति को घटित होते देखता है तो उसकी दृष्टि में इसे नापने के लिए एक मापदंड होगा और ये मापदंड निर्धारित करेगा कि इसके साथ निपटने के लिए वो किसी योजना की शुरुआत करता है या नहीं, या उसे इस चीज एवं परिस्थिति के साथ किस प्रकार निपटना है। वो उदासीन नहीं है या उसके पास सभी चीजों के प्रति कोई भावनाएं नहीं है, ये असल में पूर्णतः विपरीत है। यहां एक वचन है जिसे परमेश्वर ने नूह से कहा था। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इस समय परमेश्वर के वचनों में क्या उसने कहा था कि वो सिर्फ मनुष्यों का विनाश कर रहा था? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि वो हाड़ मांस के सब जीवित प्राणियों का विनाश करने जा रहा था। परमेश्वर ने विनाश क्यों चाहा? यहां परमेश्वर के स्वभाव का एक और प्रकाशन है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की भ्रष्टता के प्रति सभी प्राणियों की अशुद्धता, उपद्रव एवं अनाज्ञाकारिता के प्रति उसके धीरज की एक सीमा होती है। उसकी सीमा क्या है? ये ऐसा है जैसा परमेश्वर ने कहा था, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। इस वाक्यांश क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कोई भी जीवित प्राणी परमेश्वर का अनुसरण करने वालों समेत ऐसे लोग जो परमेश्वर का नाम पुकारते थे, ऐसे लोग जो किसी समय परमेश्वर को होम बलि चढ़ाते थे, ऐसे लोग जो मौखिक रूप से परमेश्वर को स्वीकार करते थे और यहां तक कि परमेश्वर की स्तुति भी करते थे, जब एक बार उनका व्यवहार भ्रष्टता से भर गया और परमेश्वर की दृष्टि तक पहुंच गया, तो उसे उन्हें नाश करना होगा। ये परमेश्वर की सीमा थी। अतः परमेश्वर किस हद तक मनुष्य एवं सभी प्राणियों की भ्रष्टता के प्रति सहनशील बना रहा? उस हद तक जब सभी लोग, चाहे परमेश्वर के अनुयायी हो या अविश्वासी, सही मार्ग पर नहीं चल रहे थे। उस हद तक कि मनुष्य केवल नैतिक रूप से भ्रष्ट और बुराई से भरा हुआ नहीं था, बल्कि जहां कोई व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता था। किसी ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए जो विश्वास करता था कि परमेश्वर के द्वारा इस संसार पर शासन किया जाता है, और ये कि परमेश्वर लोगों को ज्योति में और सही मार्ग पर ला सकता है। उस हद तक जहां मनुष्य ने परमेश्वर के अस्तित्व को तुच्छ जाना और परमेश्वर को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी, जब एक बार मनुष्य की भ्रष्टता इस बिंदु पर पहुंच गई, तो परमेश्वर के पास आगे और धीरज नहीं होगा। इसके बजाय उसका स्थान कौन लेगा? परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के दंड का आगमन, क्या ये परमेश्वर के स्वभाव का एक आंशिक प्रकाशन नहीं था? इस वर्तमान युग में क्या परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी कोई धर्मी मनुष्य है? क्या परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी कोई सिद्ध मनुष्य है? क्या ये युग ऐसा युग है जिसके अंतर्गत परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पर सभी प्राणियों का व्यवहार भ्रष्ट हो गया है? आज के दिन और युग में ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्हें परमेश्वर पूर्ण करना चाहता है, ऐसे लोग जो परमेश्वर का अनुसरण और उसके उद्धार को स्वीकार कर सकते हैं, क्या हाड़ मांस के सभी लोग परमेश्वर के धीरज की सीमा को चुनौती नहीं दे रहे हैं? क्या सभी चीजें जो तुम लोगों के आसपास घटित होती है, जिन्हें तुम लोग अपनी आंखों से देखते हो और अपने कानों से सुनते हो और इस संसार में व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हो, उपद्रव से भरी हुई नहीं है? परमेश्वर की दृष्टि में क्या एक ऐसे संसार एवं ऐसे युग को समाप्त नहीं कर देना चाहिए? यद्यपि इस वर्तमान युग की पृष्ठभूमि नूह के समय की पृष्ठभूमि से पूर्णतः अलग है, फिर भी वे भावनाएं एवं क्रोध जो मनुष्य की भ्रष्टता के प्रति परमेश्वर में हैं, वे वैसी ही बनी रहती हैं जैसी वे पिछले समय में थी। परमेश्वर अपने कार्य के कारण सहनशील होने में समर्थ हैं, किंतु सब प्रकार की परिस्थितियों एवं हालातों के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में इस संसार को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। जैसा पिछले समय में था, जब जलप्रलय के द्वारा संसार का विनाश किया गया था, उसके लिहाज से परिस्थिति बिल्कुल अलग है। किंतु अंतर क्या है? साथ ही ये ऐसी चीज है जो परमेश्वर के हृदय को अत्यंत दुखी करती है, और कदाचित कुछ ऐसा है जिसकी तुम लोगों में से कोई भी सराहना नहीं कर सकता है। जब वो जलप्रलय के द्वारा संसार का नाश कर रहा था, तब परमेश्वर नूह को जहाज बनाने और कुछ तैयारी के काम के लिए बुला सकता था। परमेश्वर एक पुरुष नूह को बुला सकता था कि वो उसके लिए कार्यों की इन श्रृंखलाओं को अंजाम दे, किंतु इस वर्तमान युग में परमेश्वर के पास कोई नहीं है कि उसे बुलाएं। ऐसा क्यों है? हरेक व्यक्ति जो यहां बैठा है, वो शायद उस कारण को समझता और जानता है। क्या तुम लोगों को आवश्यकता है कि मैं इसे बोलकर बताऊं? जोर से कहने से हो सकता है कि तुम लोगों का चेहरा उतर जाए या सब परेशान हो जाएं। कुछ लोग कह सकते हैं, हालांकि परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी लोग नहीं हैं और हम सिद्ध लोग नहीं हैं, फिर भी यदि परमेश्वर हमें कोई चीज करने के लिए निर्देश देता है, तो हम अभी भी इसे करने में समर्थ होंगे। इससे पहले जब उसने कहा कि एक विनाशकारी तबाही आ रही थी, तो हमने भोजन एवं चीजों को तैयार करना शुरू कर दिया था जिनकी आवश्यकता किसी आपदा में होगी। क्या ये सब परमेश्वर की मांगों के अनुसार नहीं किया गया था? क्या हम सचमुच में परमेश्वर के कार्य के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे? जो चीजें हमने की, क्या उनकी तुलना जो कुछ नूह ने किया उससे नहीं की जा सकती है? हमने जो किया, क्या वो करना सच्ची आज्ञाकारिता नहीं है? क्या हम परमेश्वर के निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहे थे? क्या हमने जो परमेश्वर ने कहा वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें परमेश्वर के वचनों में विश्वास है? तो परमेश्वर अब भी दुखी क्यों है? परमेश्वर क्यों कहता है कि उसके पास बुलाने के लिए कोई भी नहीं है? क्या तुम लोगों के कार्यों और नूह के उन कार्यों के बीच कोई अंतर है? अंतर क्या है?
आपदा के लिए आज भोजन तैयार करना हमारा अपना इरादा था।
हमारे कार्य धर्मिता तक नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि नूह परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी पुरुष था।
जो कुछ तुम लोगों ने कहा वो बहुत गलत नहीं है। जो नूह ने किया वो भौतिक रूप से उससे अलग है जो लोग अब कर रहे हैं। जब नूह ने वैसा किया जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था, तो वो नहीं जानता था कि परमेश्वर के इरादे क्या थे। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या पूरा करना चाहता था। परमेश्वर ने नूह को सिर्फ एक आज्ञा दी थी, उसे कुछ करने के लिए निर्देश दिया था, किंतु बिना अधिक विवरण के वो आगे बढ़ा और इसे किया। उसने गुप्त में परमेश्वर के इरादों को जानने की कोशिश नहीं की, नहीं उसने परमेश्वर का विरोध किया या नहीं उसके पास दो मन था। वो मात्र गया और इसे एक शुद्ध एवं सरल हृदय के अनुसार किया। जो कुछ करने के लिए परमेश्वर ने उसे अनुमति दी उसने उसे किया, और कार्यों को करने के लिए परमेश्वर के वचन को मानना एवं सुनना उसका दृढ़ विश्वास था। जो कुछ परमेश्वर ने उसे सौंपा था उसके साथ उसने इसी प्रकार स्पष्टवादिता एवं सरलता से व्यवहार किया था। उसका सार, उसके कार्यों का सार आज्ञाकारिता थी। दूसरा अनुमान नहीं था, प्रतिरोध नहीं था, और इसके अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत रुचियों और अपने लाभ एवं हानि के विषय में सोचना नहीं था। इसके आगे जब परमेश्वर ने कहा कि वो जल प्रलय से संसार का नाश करेगा, तो उसने नहीं पूछा कब या इसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, और उसने निश्चित तौर पर परमेश्वर से नहीं पूछा कि वो किस प्रकार संसार को नष्ट करने जा रहा था। उसने केवल वही किया जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था। चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर चाहता था कि इसे बनाना है या इसे किससे बनाना है, उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था, और उसके तुरंत बाद कार्य का प्रारंभ भी किया था। उसने इसे परमेश्वर को संतुष्ट करने की एक मनोवृत्ति के साथ किया था। क्या वो इसे आपदा को हटाने के लिए स्वयं की सहायता के लिए कर रहा था? नहीं। क्या उसने परमेश्वर से पूछा कि संसार को नष्ट होने में कितना समय बाकी है? उसने नहीं पूछा। क्या उसने परमेश्वर से पूछा या क्या वो जानता था कि जहाज बनाने के लिए कितना समय लगेगा? वो ये भी नहीं जानता था। उसने केवल आज्ञा को माना, ध्यान से सुना और इसके अनुसार किया। इस समय के लोग वैसे नहीं हैं। जैसे ही परमेश्वर के वचन से हल्की सी जानकारी निकलती है, जैसे ही लोग परेशानी या समस्या के किसी चिन्ह का आभास करते हैं, वे तुरंत कार्य करने के लिए उछलने लगते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए और कीमत की परवाह किए बगैर इसकी तैयारी करने के लिए कि वे आपदा के बाद क्या खाएंगे, क्या पिएंगे एवं क्या उपयोग करेंगे। यहां तक कि जब विपत्ति आती है तो वे बच निकलने के अपने मार्गों की योजना बना लेते हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प तो ये है कि इस मुख्य क्षण में मानवीय दिमाग बहुत ही उपयोगी होते हैं। उन परिस्थितियों के अंतर्गत जहां परमेश्वर ने कोई निर्देश नहीं दिया है, मनुष्य बिल्कुल उपयुक्त ढंग से सब कुछ की योजना बना लेता है। तुम लोग इसका वर्णन करने के लिए सिद्ध शब्द का उपयोग कर सकते हो। जहां तक ये बात है कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के इरादे क्या है या परमेश्वर क्या चाहता है, कोई भी परवाह नहीं करता है और कोई भी इसकी सराहना करने की कोशिश नहीं करता है। क्या ये आज के लोगों और नूह के बीच में सबसे बड़ा अंतर नहीं है? नूह की कहानी के इस अभिलेख में क्या तुम लोग परमेश्वर के स्वभाव के एक भाग को देखते हो? मनुष्य की भ्रष्टता, अशुद्धता एवं उपद्रव के प्रति परमेश्वर के धीरज की एक सीमा है। जब वो उस सीमा तक पहुंच जाता है तो वो आगे से और धीरज नहीं धरता है और इसके बजाय वो अपने नए प्रबंधन और नई योजना को शुरू करेगा। जो उसे करना है उसे प्रारंभ करेगा और अपने कार्यों और अपने स्वभाव के दूसरे पहलू को प्रकट करेगा। उसका ये कार्य ये दर्शाने के लिए नहीं है कि मनुष्य के द्वारा कभी उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए या ये कि वो अधिकार एवं क्रोध से भरा हुआ है, और ये इस बात को दर्शाने के लिए नहीं है कि वो मानवता का नाश कर सकता है। ये ऐसा है कि उसका स्वभाव एवं उसका पवित्र सार अब और ये अनुमति नहीं दे सकता है और इस प्रकार की मानवता के लिए परमेश्वर के सामने जीवन बिताने हेतु और उसकी प्रभुता के अधीन जीवन जीने हेतु अब और धीरज नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जब सारी मानव जाति उसके विरुद्ध है, जब सारी पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जिसे वो बचा सकता है, तो ऐसी मानवता के लिए उसके पास आगे से और धीरज नहीं होगा और वो बिना किसी संदेह के अपनी योजना को संपन्न करेगा इस प्रकार की मानवता को नाश करने के लिए। परमेश्वर के द्वारा किए गए ऐसे कार्य को उसके स्वभाव के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये एक आवश्यक परिणाम है और ऐसा परिणाम है जिसे परमेश्वर की प्रभुता के अधीन प्रत्येक सृजे गए प्राणी को सहना होगा। क्या ये नहीं दर्शाता है कि इस वर्तमान युग में परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने और उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें वो बचाना चाहता है और इंतजार नहीं कर सकता है? इन परिस्थितियों के अंतर्गत परमेश्वर किस बात की सबसे अधिक परवाह करता है? ये नहीं कि किस प्रकार ऐसे लोग जो उसका अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करते हैं या ऐसे लोग जो उसका विरोध करते हैं वे किसी भी तरह से उससे व्यवहार करते हैं या उसका प्रतिरोध करते हैं, या मानव जाति किस प्रकार उस पर कलंक लगा रही है, वो केवल इसके विषय में परवाह करता है कि वे लोग जो उसका अनुसरण करते हैं उसकी प्रबंधन योजना में उसके उद्धार की चीजें, उन्हें उसके द्वारा पूर्ण बनाया गया है या नहीं, उन्होंने उसकी संतुष्टि को हासिल किया है या नहीं। जहां तक उन लोगों की बात है जो ऐसे लोगों से अलग हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं, वो मात्र कभी कभार ही अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा दंड देता है। उदाहरण के लिए, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट एवं इत्यादि। ठीक उसी समय वो उनको भी बलपूर्वक बचाता है, उनकी देखरेख करता है जो उसका अनुसरण करते हैं, और उन्हें उसके द्वारा बचाया जाने वाला है। परमेश्वर का स्वभाव ये है, एक ओर वो उन लोगों को अधिकतम धीरज एवं सहनशीलता प्रदान कर सकता है जिन्हें वो पूर्ण बनाने का इरादा करता है, और जब तक वो संभवतः कर सकता है वो उनके लिए इंतजार करता है। दूसरी ओर परमेश्वर शैतान प्रकार के लोगों से अत्यंत नफरत एवं घृणा करता है जो उसका अनुसरण नहीं करते हैं और उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या ये शैतान प्रकार लोग उसका अनुसरण करते हैं या उसकी आराधना करते हैं, वो तब भी उनसे घृणा करता है जबकि उसके हृदय में उनके लिए धीरज होता है, और चूंकि वो इन शैतान प्रकार के लोगों के अंत को निर्धारित करता है, इसलिए वो अपने प्रबंधकीय योजना के चरणों के आगमन का भी इंतजार कर रहा होता है। आओ हम अगले अंश को देखें। 2. जल प्रलय के बाद नूह के लिए परमेश्वर की आशीष। उत्पत्ति 9:1-6। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तुम लोग इस अंश से क्या देखते हो? मैंने इन वचनों को क्यों चुना? मैंने जहाज पर नूह और उसके परिवार के जीवन से एक उद्धरण क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस जानकारी का उस विषय से ज्यादा संबंध नहीं है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं वो है परमेश्वर का स्वभाव। यदि तुम लोग उन विवरणों के विषय में जानना चाहते हो तो तुम लोग बाइबल उठाकर स्वयं के लिए पढ़ सकते हो। यहां हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे। वो मुख्य बात जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो इस विषय में है कि परमेश्वर के कार्यों को कैसे जानें। नूह ने परमेश्वर के निर्देशों को स्वीकार किया और जहाज बनाया और उन दिनों के दौरान जीवित रहा जब परमेश्वर ने संसार का नाश करने के लिए जल प्रलय का उपयोग किया। उसके पश्चात 8 लोगों का उसका पूरा परिवार जीवित बच गया। नूह के परिवार के 8 लोगों को छोड़कर सारी मानव जाति का नाश कर दिया गया था और पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का नाश कर दिया गया था। नूह के लिए परमेश्वर ने उसे आशीषें दी और उससे और उसके बेटों से कुछ बातें कहीं। ये बातें वे थीं जिन्हें परमेश्वर उन्हें प्रदान कर रहा था और उसके लिए परमेश्वर की आशीष भी थी। ये वो आशीष एवं प्रतिज्ञा है जिसे परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो उसे ध्यान से सुन सकता है और उसके निर्देशों को स्वीकार कर सकता था, और साथ ही ऐसा तरीका भी है जिससे परमेश्वर लोगों को प्रतिफल देता है। कहने का तात्पर्य है, इसके बावजूद कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में एक सिद्ध पुरुष था या एक धर्मी पुरुष था, और इसके बावजूद कि वो परमेश्वर के बारे में कितना कुछ जानता था, संक्षेप में नूह और उसके 3 पुत्र सभी ने परमेश्वर के वचनों को सुना था, परमेश्वर के कार्य के साथ सहयोग किया था और वही किया था जिसे उनसे परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार करने की अपेक्षा की गई थी। परिणाम स्वरूप जल प्रलय के द्वारा संसार के विनाश के बाद उन्होंने मनुष्यों एवं विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों को पुनः प्राप्त करने में परमेश्वर की सहायता की थी और परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना के अगले चरण में बड़ा योगदान दिया था। वो सब कुछ जो उसने किया था उसके कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। शायद आज के लोगों के लिए जो कुछ नूह ने किया था वो उल्लेख करने के भी लायक नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं नूह ने कुछ भी नहीं किया था, परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए अपना मन बना लिया था, अतः उसे निश्चित रूप से बचाया जाना था। उसके जीवित बचने का श्रेय उसे नहीं जाता है। ये वो है जिसे परमेश्वर घटित करना चाहता था क्योंकि मनुष्य निष्क्रिय है, लेकिन ये वो नहीं है जो परमेश्वर सोच रहा था। परमेश्वर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति महान है या मामूली, जब तक वे उसे ध्यान से सुन सकते हैं, उसके निर्देशों और जो कुछ वो सौंपता है उसका पालन कर सकते हैं और उसके कार्य, उसकी इच्छा एवं उसकी योजना के साथ सहयोग कर सकते हैं, ताकि उसकी इच्छा एवं उसकी योजना को निर्विघ्नता से पूरा किया जा सके, तो ऐसा आचरण उसके द्वारा उत्सव मनाए जाने के योग्य हैं और उसकी आशीष को प्राप्त करने के योग्य हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को मूल्यवान जानकर सहेज कर रखता है और वो उनके कार्यों एवं अपने लिए उनके प्रेम एवं उनके स्नेह को हृदय में संजोता है। ये परमेश्वर की मनोवृत्ति है। तो परमेश्वर ने नूह को आशीष क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर इसी तरह से ऐसे कार्यों एवं मनुष्य की आज्ञाकारिता से व्यवहार करता है। नूह के विषय में परमेश्वर की आशीष के लिहाज से कुछ लोग कहेंगे, यदि मनुष्य परमेश्वर को ध्यान से सुनता है और परमेश्वर को संतुष्ट करता है तो परमेश्वर को मनुष्य को आशीष देना चाहिए। क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं मनुष्य परमेश्वर की आशीष का आनंद उठाने के लायक नहीं है। ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो कुछ परमेश्वर सौंपता है उसे स्वीकार करता है तो परमेश्वर के पास न्याय करने के लिए एक मापदंड होता है कि उस व्यक्ति के कार्य अच्छे हैं या बुरे, और ये कि उस व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया है या नहीं, और ये कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट किया है या नहीं, और ये कि जो कुछ वे करते हैं वे उपयुक्त है या नहीं। परमेश्वर जिसकी परवाह करता है वो किसी व्यक्ति का हृदय है, न कि सतह पर किए गए उनके कार्य। स्थिति ऐसी नहीं है कि परमेश्वर को किसी व्यक्ति को तब तक आशीष देना चाहिए जब तक वे इसे करते हैं, इसके बावजूद कि वे इसे कैसे करते हैं। ये परमेश्वर के बारे में लोगों की गलतफहमी है। परमेश्वर सिर्फ चीजों के अंत के परिणाम को ही नहीं देखता, बल्कि इस पर अधिक जोर देता है कि किसी व्यक्ति का हृदय कैसा है और चीजों के विकास के दौरान किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी है, और ये देखता है कि उनके हृदय में आज्ञाकारिता, विचार एवं परमेश्वर को संतुष्ट करने की इच्छा है या नहीं। उस समय नूह परमेश्वर के विषय में कितना जानता था? क्या ये उतना था जितने ये सिद्धांत हैं जिन्हें अब तुम लोग जानते हो? उस सच्चाई के पहलुओं के संबंध में जैसे परमेश्वर की अवधारणाएं एवं उसका ज्ञान, क्या उसने उतनी सिंचाई एवं चरवाही पाई थी जितनी तुम लोगों ने पाई है? नहीं, उसने नहीं पाई। लेकिन एक तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता है, चेतना में, मस्तिष्कों में और यहां तक कि आज के लोगों के हृदयों की गहराई में भी परमेश्वर के विषय में उनकी अवधारणाएं और मनोवृत्ति धुंधली एवं अस्पष्ट हैं। तुम लोग यहां तक कह सकते हो कि लोगों का एक हिस्सा परमेश्वर के अस्तित्व के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति को थामे हुए है, लेकिन नूह के हृदय एवं चेतना में परमेश्वर का अस्तित्व पूर्ण एवं बिना किसी संदेह के था, और इस प्रकार परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता अमिश्रित थी और परीक्षा का सामना कर सकती थी। परमेश्वर के प्रति उसका हृदय शुद्ध एवं खुला हुआ था। उसे परमेश्वर के हरेक वचन का अनुसरण करने हेतु अपने आप को आश्वस्त करने के लिए सिद्धांतों के बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। नहीं उसे परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए बहुत सारे तथ्यों की आवश्यकता थी, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने सौंपा था वो उसे स्वीकार कर सके और जो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर ने उसे अनुमति दी थी वो उसे करने के योग्य हो सकें। ये नूह और आज के लोगों के बीच आवश्यक अंतर है, और साथ ही ये बिल्कुल सही परिभाषा भी है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक सिद्ध पुरुष कैसा होता है। जो परमेश्वर चाहता है वो नूह के समान लोग हैं। वो उस प्रकार का व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है, और बिल्कुल उसी प्रकार का व्यक्ति है जिसे परमेश्वर आशीष देता है। क्या तुम लोगों ने इससे कोई अद्भुत प्रकाशन प्राप्त किया है? लोग मनुष्यों को बाहर से देखते हैं, जबकि जो कुछ परमेश्वर देखता है वो लोगों के हृदय एवं उनके सार हैं। परमेश्वर किसी को भी अपने प्रति अधूरा मन या संदेह रखने की अनुमति नहीं देता है, न ही वो लोगों को किसी रीति से उस पर संदेह करने या उसकी परीक्षा लेने की इजाजत देता है। इस प्रकार, हालांकि आज लोग परमेश्वर के वचन के आमने सामने हैं, या तुम लोग ये भी कह सकते हो कि परमेश्वर के आमने सामने हैं, फिर भी किसी चीज के कारण जो उनके हृदयों की गहराई में है, उनके भ्रष्ट मूल तत्व के अस्तित्व और उसके प्रति उनकी प्रतिकूल मनोवृत्ति के कारण परमेश्वर में उनके सच्चे विश्वास से उन्हें अवरोधित किया गया है, और उसके प्रति उनकी आज्ञाकारिता में उन्हें बाधित किया गया है। इस कारण ये उनके लिए बहुत कठिन है कि वे उसी आशीष को हासिल करें जिसे परमेश्वर ने नूह को प्रदान किया था।